अगली सूरत लुकमान है। आप कह लीजिए कि सूरत लुकमान क्या है? एक पैकेज है। किसका? पेरेंटिंग का और अल्लाह से मोहब्बत का। शुरू के पहले हिस्से में कुछ ऐसी खराबियां हैं जो पेरेंटिंग की कमी बेशी में या वक्त पे तरबियत ना शुरू करने के नतीजे में सामने आती हैं, और दूसरे रुकू में लुकमान जो एक नेक शख्स थे उनकी कुछ खूबसूरत किस्म की नसीहतें सामने रखकर अल्लाह ताला ने हमें आज सिखा दिया कि तुम्हें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। आइए इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। ये किताबे हकीम की आयात है, नोट करें। ये किताब आपको हिकमतें सिखाती है, क्योंकि ये किताब खुद हिकमतों से भरी हुई है और अल हकीम की तरफ से आई है। और क्या खूबी है इस किताब की? हिदायत, गाइड बुक और रहमत है। किसके लिए? मुहसिनीन के लिए। तो मुहसिन की क्या तारीफ पढ़ी थी हमने सूरत अनकबूत में? मुहसिन वो है कि जो अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करके एहसान न जतलाए, अल्लाह के काम करके उसको ऑनर समझे, अल्लाह के बंदों को खैर देने की नियत कर ले। हम दुआ करते अल्लाह में मुहसिन बनाए। अगली आयत में मुहसिन की डिस्क्रिप्शन, कौन है मुहसिन, हाईलाइट कीजिएगा। पहले खुद से पूछिए, क्या मैं मुहसिना बनना चाहती हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगाज कहाँ से होगा? अल्लज़ीना युकीमूना सला, जो लोग नमाज कायम करते हैं। चेक करते हैं अपनी नमाजों को, मेरी नमाजें पूरी हैं? मेरे नमाजों की कैफियत क्या है? अब तो सूरत मोमिनून में खाशियों की बात भी पढ़ ली, जो हाफिजून की भी बात पढ़ ली, तो नमाज की हिफाजत दीन की हिफाजत है। जिस तरह रमजान में नमाजों की हिफाजत है, इसी तरह गैर रमजान में भी इंशाल्लाह नमाजें नहीं छोड़नी। और नमाज हमें ट्रैक पे रखती है, याद रखिए। ये सीधी होगी, बाकी सीधा होगा। 5 वक्त अल्लाह से गुफ्तगू कर लेंगे समझ कर, तो मैं आप सबको दावत दूंगी कि नमाज का तर्जमा सीखें। एक दफा जरूर देखें कि हम इस नमाजों में अल्लाह से क्या बातें करते हैं। और या कना बुदवा या कना स्तीन समझ आ गया, बाकी चीजें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। दूसरी चीज, वो ज़कात देते हैं, ज़कात पे भी हमने गौर कर लिया पीछे। तो तीसरी चीज, वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाना। मुकम्मल कामयाबी सिर्फ मुहसिनों लगी। और मुहसिन कौन है? अल्लाह के नकत राहू की कैफियत है, गोया के मामले में मुहसिन को देने वाला बने की बजाय अल्लाह ताला हमें मुहसिन बना दे। लेकिन कुछ लोग मुहसिन नहीं होते बल्कि वो मुजरिम होते हैं। क्या करते हैं? हाईलाइट कीजिएगा। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन। और इंसानों में कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है। ये लहवल हदीस क्या है? मकसद से गाफिल कर देने वाली सरगर्मियां। कोई कॉल, कोई फेल, कोई बात, वो खेल भी है, वो तमाशा भी है, वो फिल्म भी है, वो ड्रामा भी है और वो गाना भी है, कि जिससे इंसान जिंदगी के मकसद से गाफिल हो और उम्मत मुस्लिमा के बनने के मकसद से गाफिल हो जाए। नजर बिन हास्ता, जब उसने देखा कि सच्चे मुसलमान नफ्सल पीछे नहीं हट रहे अल्लाह के नबी से, हमसे शौक बढ़ता ही जा रहा है, मुल्क शाम से गाने वाली लोड़ियां खरीद, यानी आप कह लीजिए कि जो सिंगर्स थी, और ला के उनको उन रास्तों पे बिठा दिया जहां से लोग नमाजों के लिए जाते और सहाबा गुजरते, और उनको कहता खा। जिस किसी को देखता कि वो इस्लाम से मुतासिर है, नबी सल्लम की दावत से इंप्रेस हो रहा है, कुरान की तरफ आ रहा है, तो अपनी एक लौंडी को मुसल्लत करता, कहता जा इसको खूब खिला पिला और इसको महव कर दे। अल्लाह ने उसकी बात कर दी। कल तो एक नजर बिन हारस था, आज तो लाखों करोड़ों होंगे एल्बम्स के, जिन्होंने आज हमारी यूथ को, और यूथ तो छोड़िए, बूढ़े होने पे भी ये शौक नहीं जाते, तब भी वो कहते हैं नहीं, फिल्मों और ड्रामों से हिदायत मिलती है। और कई बूढ़े हैं जो जिंदगी के आखिरी दिनों में बैठे हैं, जब तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह और नेकियों में कोशिश करने की उम्र होती है, उस वक्त भी वो घंटों स्क्रीनों के आगे बैठकर अपनी जिंदगी को आग लगा रहे हैं। कल मौत आएगी तो क्या सोचेंगे? और वो उससे भी बड़े जालिम है कि जब वो बेचारे बीमार होकर हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं तो उनके बेड के ऊपर स्क्रीन पे उनको ऐसी एंटरटेनमेंट दिखाते हैं कि इस बीमारी में भी अल्लाह का जिक्र ना आए। तो याद रखिए, मिसाली घरों से गैना की नहीं कुरान की आवाजें आती हैं, गैना गाने को कहते हैं। और गैना और जिना का इलाज नमाज और कुरान है। 21वें पारे के शुरू में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर उसी की बात आ गई। तो दुआ कीजिए कि हमारे घरों से कुरान की आवाज़ें उठें और हमारी नस्लों के कानों में कुरान पढ़े। आज अपने दिल से नियत करके देख लें, जब तक आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, कुरान की मोहब्बत नहीं आएगी। एक रिवायत का खुलासा है, दो आवाज़ें जो मबगूज हैं अल्लाह को गज़ब आता है, गुस्सा आता है, बुग़्ज़ आता है कह लें, खुशी के वक्त गिना और गम के वक्त नौहा। और आज कहते हैं म्यूजिक के बगैर शादी हो जाए, अल्लाह को गजब और बुग़्ज़ हो रहा है, अल्लाह फील एनिमिटी। पता नहीं अल्लाह कितना सब्र करता है ऐसे मौकों पे, जब हम महफिल मौसीकियां और इस तरह के राग रंग और इस तरह के कॉन्सर्ट अपने बच्चों के वलीमों पे पेश करते हैं। भाई वलीमे की जरूरत क्या थी, ना करें, नहीं वो तो सुन्नत है। तो जिस चीज से अल्लाह को गुस्सा है, और फिर जब साथ ना बैठे और जब सारी मिक्स गैदरिंग ना हो, चाहे वो महफिल गजल है या राग रंग है या कुछ भी है, ये मुसलमानों को सोचना है। ताउस और रबाब आखिर, अल्लामा इकबाल आज से 200 साल पहले कह गए कि उम्मतों का क्या, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, उम्मतों की तकदीर क्या होती है, मैं तुझको बताता हूँ। ताउस और रबाब आखिर, ताउस और रबाब कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, कि मुसलमानों की नस्लों के हाथों में गिटार नहीं होते, ताउस नहीं है, रबाब नहीं है, उनके तो कुछ और है, उनकी जिंदगी का तो मकसद एक बहुत बड़ा था। आज हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं तो गिटार पे गाने गा गा के करता दिखाते हैं, कौमी नगमे मिली नगमे नाचते हैं फुदकते हैं गलियों में सड़कों पे किनारों पे, और हम कहते हैं हम बड़ी खिदमत करें उम्मत मुस्लिमा की। इन चीज़ों ने कुरान की आवाज़ को हल्का कर दिया, और कुरान की आवाज़ की आदत डाल लें एक बार अपने मन पे काबू पाकर, आपको कभी म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा। और ख़ास तौर पर वो फिर जिसके अंदर फिक्शन और गंदी शायरी भी है, अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इससे बचा के रख दे। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को बता दो कि एक दर्दनाक अजाब है, अलबत्ता जो लोग ईमान ले और नेक अमल करें इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये अल्लाह का पुख्ता वादा है, और अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और हकीम भी है। फिर अल्लाह अपनी कायनात पे गौर करवाते हैं, खलक समावाती बगैर मदिन तरउनहा, और इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाएं, इसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी, ये तो है अल्लाह की तख्लीक। अब जरा तुम मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह कि ये जालिम सरी गुमराही में पड़े हुए, कल के तो बुत थे और उन्होंने तो कुछ नहीं पैदा किया था। अगर आज आप साइंस और दुनियावी तरक्की को भी ले लीजिए, एक तरफ कायनात में अल्लाह की निशानियां और एक तरफ मॉडर्न दौर की तरक्की, दोनों का तकाबुल है कोई? आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, शेंगलेट लगा लेते हैं, आप उसके अंदर चूना और पेंट और रंग भरंग लगा ले, उसके तकाबुल में जरा आसमान को देखिए, पानी को देखिए, कायनात की जिस चीज को आप गौर से देखेंगे आपको उसमें मोहब्बत दिखेगी। अल्लाह का कमाल भी और जमाल भी है, तो उस अल्लाह से मोहब्बत करने की जरूरत है। बागे लुकमान की नसीहत है, इसको भी हम इकट्ठा पढ़ के कोशिश करेंगे कि इसमें से अपने लिए अमल की बातें लें, कि औलाद के साथ किस उम्र में कब क्या बात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंटिंग ए टू जी में इसी टॉपिक पर, इन्हीं आयतों को लेकर डिटेल से एक टॉपिक मौजूद है, यूथ से कैसे डील करें, गुस्से वाले बच्चों से कैसे डील करें, छोटी उम्र में कैसे करें, किस उम्र में किस बच्चे को लेना है, फिर उनकी डिफरेंट मैनेजमेंट है, पनिश मैनेजमेंट क्या है, फिर गिफ्ट देने कैसे है, तारीफ कैसी है, तनकीद के। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर सुनिए पेरेंटिंग ए टू जी, खास तौर पे वो औरतें या लड़कियां जो माएं हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीजें बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमने एक उम्मत प्रोड्यूस करनी है, और उम्मत प्रोड्यूस कब करेंगे अच्छी, जब तरीकाकार ठीक होगा। किसी भी मुल्क की कौम और नस्लें वहां का प्रोडक्ट होती हैं। आप कह लें कि शादी एक फैक्ट्री है, इदारा है, खानदान, वहां से नस्लें चलती हैं। किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का प्रोडक्ट बताता है कि वो फैक्ट्री ठीक काम कर रही है कि नहीं, तो प्रोडक्ट तो आज परेशान है, कहीं छोटी उम्र में ड्रग एडिक्टेड है और कहीं वो हाइपर है और कहीं कुछ है, तो शायद इसका वजह क्या है कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही। पीछे वाली आयत को साथ जोड़ ले, शौहर बीवी का अपना ताल्लुक बैलेंस्ड होगा, खूबसूरत होगा, तो बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे। और सिंगल मदर्स कभी पूरे बच्चे नहीं पाल सकती, कभी माँ के पास बच्चा, कभी बाप के पास। आज ये भी एक वेस्ट का अजीब सा ही मजाक है, सेपरेशन होती है तो या बच्चा माँ के घर रह रहा है, बाप के घर रह रहा है, अब दोनों में डिफरेंसेस हैं, हफ्ते के 3 दिन माँ के पास है तो 4 दिन बाप है, तो वीकडेज इधर तो वीकेंड, देखा जाए तो अकल से तो ये बात ठीक है, कि भी बच्चे को दोनों दो, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, आपने अगर ऑब्जर्व किया नहीं, मैंने ऐसी चीजों को बहुत करीब से देखा है लोगों के फायदे के लिए, कि देखूं कि बच्चों की साइकी क्या होता, क्या आपको पता? 4 दिन मां नॉन मुस्लिम थी, बच्चा उसके घर गया, तो 2 दिन वीकेंड पे या 5 दिन उधर था, तो 2 दिन मुस्लिम बाप के घर आ गया। माँ ने उसको पूरी क्रिश्चियनिटी और अपना बेदीनी सिखा दी, बाप इस्लाम सिखा रहा है। माँ बाप की बुराइयां करती दिखती है, बाप माँ की, एंड पे बच्चा किधर जाता है? जिसका रुख ज्यादा होगा। मैंने देखा है कि बचपन में पाबंदियां अच्छी नहीं लगती, माँ तो कोई पाबंदी नहीं लगाती, बाप बहुत सख्ती करता है, दादी और भी उस पर सख्त है, आखिर वो बच्चे भी 16-17 साल के होके उन्हीं नॉन मुस्लिमों को पसंद करते हैं। ये कई कहानियां मैंने सुनी ऐसी, क्योंकि गुनाह में कशिश होती है, तो ये कोई सही तरीकाकार नहीं है। इस्लाम का मिजाज क्या है ये आप अलग से पढ़ के देखिए। अगर आपने लॉ पढ़ा तो आपको आपका फर्ज बनता है कि इस्लामिक लॉज पढ़े कि डिवोर्स की सूरत में किस उम्र का बच्चा किसके साथ रहे, छोटा बच्चा माँ का है, बड़ा बच्चा बाप का है, ताकि बड़ी उम्र में बच्चों को बाप की जरूरत होती है, छोटे दूध पीते बच्चे को माँ की जरूरत होती है। लेकिन मेरे अपने लिए, आपके लिए, हमारे लिए ये रूल्स अगर नए हैं तो अपने गैरों को कहाँ देने? क्या जब मुसलमान नॉन मुस्लिम मुल्कों के लॉज में जाके मुस्लिम लॉज इस खूबसूरत तरीके से नहीं पेश कर सकते कि वी वॉन्ट टू गिव योर सजेशन? और ये मेरा ही मानना है कि आप ब्रिटिश लॉ में या अमेरिकन लॉ में या दुनिया के किसी लॉ में अगर एक इस्लाम का लॉ डलवा दें तो इस्लाम का लॉज वक्त के साथ उनको अपना फायदा दिखाएगा, क्योंकि दिस लॉ इज फ्रॉम अल्लाह सुभान व तआला। तो हम तो अपने मुल्कों में नहीं कर पाते, दूसरों में क्या करेंगे? दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हिकमत दे दे। आइए देखते हैं। वइस काल लुकमान लिबनिही वहुवा याइज़ुहु या बनैया ला तुशरिक बिल्ला। और हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि वो अल्लाह का शुक्र गुजार हो जाए। ये लुकमान कौन है? ना नबी थे, ना वली थे, ना पैगंबर थे, एक साहिब हिकमत इंसान थे। और हिकमत की यहां आपको तारीफ भी समझ आ रही है और इफादियत भी दिख रही है कि हिकमत इंसान के दर्जे को बुलंद करती है। अरबों में इनका बड़ा चर्चा था, लोगों के घरों में सहीफा लुकमान के नाम पर बुक्स थी, ऐसी जैसे हमारे कल्चर में इकबाल जरी के नाम पर या कुछ तरह पढ़े लिखे लोगों में अलामा इकबाल का कलाम बहुत पढ़ा जाता है, इसी तरह अरब लोग लुकमान को पढ़ते थे। अल्लाह के नबी जो दीन लेकर आए उसमें कुछ चीजें जो लुकमान की बातों से मिलती थी। इस्लाम ने ये नहीं कहा सब फेंक दो, अब आप कुरान पढ़ने लगे घर से सब अपनी किताबें खत्म कर दें, आप नॉवल नहीं पढ़ सकते, डायजेस्ट नहीं पढ़ सकते, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम सिर्फ चीजों में से गलत चीजों को निकालता है। आप पढ़िए, आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप साइंस मैगजीन पढ़ें, आप डायजेस्ट पढ़ें, आप हालाते हाजरा पढ़ें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस्लाम आपको सिर्फ एक छोटी सी चरखी की गिरनी को बनना चाहता, तो लिहाजा अल्लाह के नबी के जरिए आयत नाजिल करके मक्का वालों को क्लोज किया गया कि नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हें लुकमान अच्छे लगते हैं तो अल्लाह को बुरे नहीं लगते, क्योंकि लुकमान का मैसेज अच्छा था। और हिकमत का तकाजा क्या था? अल्लाह का शुक्रगुजार बने। इसको हाईलाइट करें, यहां से ताल्लुक बिल्ला का भी और इंसानों के अच्छे ताल्लुकात का आगाज होता है कि बंदा शुक्रगुजार हो। शुक्र नहीं करेंगे तो ये बंदे नहीं बनेंगे, और बीवी शौहर की कदरदान नहीं होगी, शुक्रगुजार नहीं होगी तो अच्छी बीवी नहीं बनेगी। बच्चे माँ बाप के शुक्रगुजार नहीं होंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे। तो शुक्र को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है, और जितना शुक्र बढ़ता जाएगा ना उतनी हिकमत आएगी। जितने अल्लाह के शुक्रगुजार, उसकी छोटी छोटी नेमतों को आप डिस्कस कीजिए, उसका शुक्र कीजिए, उसको मेंशन कीजिए, अल्लाह आपके ऊपर हिकमतों के दरवाजे खोल देगा। हाँ, जो कोई शुक्र करेगा इसका शुक्र अपने लिए फायदेमंद है। किसको मिलेगा? आप शुक्रगुजार होंगी, आप खुद मोहब्बत लेंगी, आपको खुद नेमतें मिलेंगी। और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। नशुक्रे लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अच्छे शौहरों की कदर नहीं करेंगे ना उनकी मोहब्बत की, सिर्फ छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर आने वाले वक्त में रोएंगे। अल्लाह की इस दुनिया में हर चीज आखिरत पे नहीं डाली जाती, दुनिया में डाल दी जाती। जो बीवी अच्छे शौहर की नाकदरी करके उससे फैसला लेके घर बैठेगी ना, आने वाले दौर में अल्लाह जरूर उसको ऐसा शौहर दिलाएगा जो उसकी नाकदरी करके उसको बिठाएगा घर। ये कि टिट फॉर टैट है, दुनिया मकाफाते अमल है। इसी तरह अगर आज हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, कल हमारे बच्चे हमारी नहीं करेंगे। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर शुक्र के जज्बे पैदा करें। याद करो, जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, हक यह कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। नोट कर रहे हैं, पहला सबक जो बच्चे को सिखाया जाएगा वो तौहीद का सबक है, शिर्क से पाक। हम कहते हैं शिर्क तौहीद, ये तो बहुत आखिर में बातें करनी चाहिए, शुरू में तो करें ही ना। ये तो तब करते हैं जब लोग कब्रों पे बैठे हों। पहले डे वन से, पहले दिन यानी डे वन से बच्चे को अल्लाह की वहदानियत सिखाएं। बेटा अल्लाह ने दिया, ये दूध किसने दिया, बेटा अम्मी किसने दी, बेटा हु गिव्स यू हैंड, हु गिव्स यू आईज, हु दिस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने दूध के साथ बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत पिला दें, मत पीपल कॉन्शियस बनाएं। बेटा घर साफ कर लो, मेहमान आएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें, यानी अपने बच्चों को पीपल कॉन्शियस ना बनाएं। लोगों की नजरों में जब बच्चे बनते हैं ना, शिर्क करते हैं, फिर उनको अल्लाह का खौफ नहीं रहता। हक ये कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अल्लाह का हक हम बंदों को दे रहे होते हैं। और हकीकत यह कि हमने इंसान को अपने वालदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। नोट कीजिए कि लुकमान खुद अपने हकूक नहीं बच्चों को बता रहे, क्योंकि बंदा एम्बेरसमेंट फील करता है। अब आप अपने बच्चों को जाके माँ बाप के हकूक बता दें तो क्या होगा? अच्छा, बाज माँ बाप बड़ी नासमझी का इजहार करते हैं, बच्चों को और कुछ सिखाए ना सिखाए, जहां माँ की कोई बात है कट करके वो मैसेज दे देंगे, जहां बाप की कोई बात है माँ बाप से अच्छा रहना फौरन वो मैसेज देंगे। बच्चे अपना जहन बंद कर लेते हैं, कहते देखा अपने फायदे के लिए मैं दीन सिखा रहे। बाज दफा जवान बच्चियों को साथ लेकर आती हैं माए दरसों में, और उनके सामने कह रही होती हैं जरा आज इनको माँ बाप के हकूक बताइएगा। भाई मैं क्यों बताऊं, मुझे क्या हक है, मैं तो इनको अल्लाह का हक बताऊंगी। जिसको अल्लाह का हक आ गया ना, वो माँ बाप का भी मान लेगा। कभी कहेंगे अच्छा इनको जरा अच्छे कपड़े सिखाएं, इनको जरा लिबास, और मेरा क्या हक है, मुझे वो जानती है, मेरी बात वो एक कान से सुनेंगी दूसरी से निकल जाएंगी, अगली दफा कहेंगे हम जाते ही नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है इनको बताने का। एक चीज अपने बच्चों को सिखा दें, किसी का बड़ा खूबसूरत जुमला था, तुम अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान तुम्हारे बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। और मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को कुरान के कोर्सेज में डाल दें। अल्लाह की किताब एक माँ से भी प्यारे तरीके से तरबियत करती है, जो सूरतें जहां आनी है वहीं से है। आप कहते हैं इनको सूरत नूर पढ़ा दो, नहीं, जब अल्लाह ने सूरत नूर को 20-21वें नंबर पर रखा है तो मैं और आप क्यों पहले नंबर पर ले आए? पहले सूरह फातिहा पढ़ाएं, सूरह बकरा पढ़ाएं, सूरह आले इमरान, चलते जाएं तरतीब के साथ आपके बच्चे ले आएंगे, फिर आप देखिएगा चेंज आएगा। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप देखिएगा कि बच्चों से लेके बड़ों को इसी तरीके से तालीम देनी है कि कुरान शुरू करें उनकी जिंदगी में, उनके लेवल पे ले। कुरान छोटे बच्चों के लिए स्टोरी बुक बन जाता है, जवानों के लिए वो उनके लिए एक बड़ी खूबसूरत डिस्कवरी होता है। तो लिहाजा अपने हकूक खुद बताने की बजाय दूसरों से कहलवा दें, आप खुद ना अपने बच्चों को कभी अपने हक दें। आगे से उन्होंने कह दिया तो क्या बड़ी बात है कि ना करते पैदा, हमने कहा था पैदा करें, आपके अपने शौक थे, आप क्यों पैदा किया हमने, तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो लिहाजा बहुत ज्यादा हक जतलाने वालों को हक बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर फरमा उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल इसका दूध छूटने में लगे। कैसे अल्लाह तला को माओ पे प्यार आता है, और अल्लाह ने ये आयत ना उतारी होती तो कभी को मर्द मानता ही ना कि प्रेगनेंसी में वीकनेसेस होती हैं, और बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ कितनी कमजोर होती है। अल्लाह अपनी बंदियों की इज्जत करवाना और उनकी कदर करवाना सिखा रहा है मर्दों से कि देखो कदर करो, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को पाला, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालदैन का शुक्र बिजा ला, और मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। हाँ लेकिन यहाँ देखिए, माँ बाप की खिदमत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, मोहब्बत करनी है, तवज्जो देनी है, लेकिन उनको होली नहीं बनाना, उनके कहने पे गलत काम नहीं करने। कैसे? लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डाल दें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक कर जिसे तू नहीं जानता, तो फिर इनकी बात पर मेरे साथ किसी को शरीक करे ये नहीं करना, फिर इनकी बात हरगिज ना मान। हाँ लेकिन दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे। यानी माँ बाप अगर बेदीन भी हैं और तुम्हें अल्लाह ने दीन दे दिया, फिर भी अपने माँ बाप से बदतमीजी ना कर। क्योंकि देखिए, मेरे और आपके ऊपर अपने माँ बाप की तरबियत नहीं है, तरबियत बच्चों की जाती है। माँ बाप की तरबियत से ज्यादा उनके लिए दुआएं करें और उनकी कमजोरियों को अच्छे तरीके से दूर करवाएं, उनसे बात करें, उनको तालीम दें। लेकिन आप उनको टोक नहीं सकते क्योंकि वो बूढ़ी हड्डियां हो गई हैं, वो ऐसे अब बन चुके हैं कि वो तब्दील नहीं हो सकते। तो अल्लाह तआला कहते हैं कि बस उनके साथ अच्छे काम करते रहो, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की करना जिसने मेरी तरह रुजू किया। कभी एक तरफ माँ बाप कुछ कह रहे होते हैं, उस्ताद कोई और बात कहते हैं, तो क्या बात उस्ताद की मान लो, इज्जत प्यार मोहब्बत माँ बाप से रखो। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है, उस वक्त मैं तुमको बताऊंगा तुम कैसे अमल करते रहे।